नाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीना परादलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणं। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं मां चरणं। भारत की संस्कृति में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। इन इंडियन कल्चर दिस डे टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस एंड स्पेशल इंपॉर्टेंट डे। दिस डे राम स्टार्टेड फॉर लंका। दिस फैक्ट इज नॉट ट्रू दैट राम किल्ड रावण दिस डे। आज रामचंद्र जी ने रावण को मारा ये बात नहीं। विजया दशमी दशमी के दिन उन्होंने विजय के लिए प्रस्थान किया। उसी को बतला रहा हूं। टुडे वी सी इन इंडिया दैट वेरी बिग शिप ऑफ रावण कुंभकर्ण आर मेड अबाउट 40 feet, मोर देन 40 feet लॉन्ग सो ब्रेड एंड वेरी फ्यूरियस टाइप ऑफ रावण इज मेड विथ 10 heads, 10 सिरों वाला वो बनता है और उसको रामचंद्र जी मारते हैं ये दिखलाया जाता है। वी सी दैट एवरीवेयर इन इंडिया इन विलेजेस ऑल्सो टाउन्स ऑल्सो एस्पेशली इन मथुरा एंड इन काशी एंड इन अयोध्या वी सी दैट राम इज किलिंग रावण। Very big shape of Ravan is made and Ram has some, his bow and arrows and his swords and at once a big fire take place there and so thus Ravan is killed. इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस दिन रावण का वध किया जाता है। किंतु बात ऐसी नहीं। आज से 8-10 दिन पहले लंका को जलाकर और सीता जी का संवाद लेकर के हनुमान जी लौटते हैं और वहां पर किष्किंधा में एक बड़े फलवान बाग में उपस्थित होकर के अंगद के सहित सब बंदर लोग उसके फलों को तोड़ करके खाते हैं और मधुपान करते हैं, बड़ा उत्पात करते हैं और समय सुग्रीव का मंत्री जो उसका रक्षक था वो उनको मारने के लिए जाता, निषेध करता है, वो मानते नहीं है और उसको भी मार करके वहां से भगा दिया। शायद वो सुग्रीव का ससुर या कौन था, उसको मार करके भगा दिया। तो सुग्रीव के यहां जबकि नालिश गई, जब बंदर हनुमान न जाने कहां से आया है और अंगद भी युवराज भी साथ में है और सभी बंदरों की टोली उत्पात मचा रही है और वहां का सबसे सुंदर बगीचा उसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, उसके फलों को काट ले रहे हैं, डालियों को तोड़ रहे हैं और केले के बगीचे को सब नष्ट कर दिया और हमको भी मारा युवराज ने और हनुमान ने सब हमको मारा। वहां पर थी तारा जी, तारा ने सुग्रीव को समझाया, देखो ये स्पेशल कोई बात है, आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन करके बगीचे को नष्ट नहीं कर सकता था, इसलिए आज कुछ अनहोनी घटी है, सीता जी का पता लग गया है और इसी खुशी में वो लोग तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं और मधुपान करके आनंद कर रहे हैं, इसलिए आप कुछ चिंता करके उनके ऊपर में कोई शासनाध्यक्ष ये मत लगाएंगे, आदेश मत कीजिए, आप खुद जाइए और उनसे पूछिए। उनके सलाह से वहां पर सुग्रीव गए और सभी लोग बड़े प्रेम से उनसे मिले, बतलाया जी हनुमान जी वहां से सीता जी को पता लगा करके ये लंका में हैं, अशोक वाटिका में स्थिर हैं और ये रामचंद्र जी को संदेश देना है, वहां से ये अंगूठी भी सीता जी का ले आए। तब बड़े खुशी हुए और उन्होंने कि तुम जो इच्छा है यहां पर खाओ पियो, कोई भी आदेश नहीं रहेगा तुम लोग। तब रामचंद्र जी के पास में गए और उनके चरणों में हनुमान जी लोटपोट हो गए और सीता जी की अंगूठी दे दी। सीता जी देख करके, रामचंद्र जी देख करके निहाल हो गए। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, देखो ये पहचानता है? उन्होंने, मैं तो नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? मैं उनके पैर की अंगूठी को पहचान सकता हूं, उनके पैरों के आभूषण को पहचान सकता हूं, मैंने उनका मुख आज तक नहीं देखा, उनके तरफ में नजर नहीं मिलाया, सेवक की भांति हमने उनकी सेवा की है, बहुत दूर से रहा, उनको माता के समान में, माता नहीं माता ही जैसा उनको सम्मान करता। सब लोग देख करके लक्ष्मण जी का आदर्श, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। रामचंद्र यशोदी स्टूड अप एंड टेल व्हाट आई टोल्ड जस्ट, तुम तो इतने बड़े वीर हो, सीता जी को इस पार में क्यों नहीं लाए? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैंने उनसे प्रस्ताव तो किया, या आप हमारे पीठ पर चढ़ लें और मैं लंका से सब राक्षसों को मार करके ले चलूंगा आपको। तुमने कहा जी ऐसे मैं नहीं जाती, मैं पर पुरुष का चाहे कोई भी हो उसका स्पर्श नहीं कर सकता, जबरदस्ती रावण ने हमें पकड़ करके ले गया वो दूसरी बात रहे, किंतु अपनी जब मुझे स्वतंत्रता है तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता है। यद्यपि तुम उनके सेवक हो, हमारे भी सेवक हो, तुम हमारे बेटे भी हो, तो बड़ा बेटा भी हो जाने पर उसको स्पर्श करना नहीं अच्छा है, उसके साथ में एकांत रूप में रहना अच्छा नहीं है। इसलिए सीता जी ने कहा कि बेटा तुम जाओ राम को खबर दो और राम आए और इनको शासन करके तब जब जीत करके मुझे ले जाएंगे तभी मैं चलूंगी, इसलिए वो नहीं आ सके, नहीं तो वो हमारे मैं तो उनको ले आता। इस तरह से रामचंद्र जी 5-7 दिनों के बाद में सारी बंदरों की और रीछों की सभाएं सेनाएं स्थिर की और एक श्यामल वृक्ष के नीचे रहते थे, श्यामल वृक्ष शालमली वृक्ष, वहीं से उन्होंने आज के दिन लाखों लाखों बंदरों को, नलनील को, सुग्रीव को, जामवंत को, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेनापतियों को लेकर के आज वहां से प्रस्थान किया और 2-1 दिन के बाद ही में समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां पर समुद्र को बाण से मार करके धमका करके पुल बना करके फिर पीछे से पार करके लंका गए। उसके 90 दिन के बाद में उन्होंने रावण को मारा, रावण को उन्होंने 90 दिन के बाद में, 90 दिन का युद्ध हुआ, इसलिए अभी यहां से इस दिन प्रस्थान किया। इसलिए वाल्मीकि रामायण में और सब में इस प्रकार से आज के दिन राम के युद्ध के लिए विजय करने का दिन बतलाया गया है। बड़े बड़े राजा लोग इंडिया में, भारतवर्ष में आज के दिन अस्त्र शस्त्र को धार देते हैं, हमारे राजमिस्त्री इत्यादि सब धार देते हैं, बाणों पर शान चढ़ाते हैं, धनुष बाण को ठीक करते हैं। हमारे यहाँ की सेनाएं पहले अपने तलवार और अपने अस्त्र शस्त्रों को ठीक से लेकर के और विजय के लिए वन में कहीं यात्रा करती थी आर्टिफिशियल युद्ध के लिए, अभी भी वो सब चीजें उसी तरह से चलती हैं। इसलिए आज रामचंद्र जी ने लंका युद्ध के लिए विजय किया था, इसलिए इसको विजयादशमी कहते हैं। बोल दीजिए के दिन जो कोई भी शुभ काम कर्म होगा, जो कहीं दिन नहीं मिलता है, आज के दिन में करने से उसका शुभ फल होता है। कोई भी कार्य हो, किसी काम के लिए मुहूर्त सुबह नहीं निकल रही, गृह प्रवेश के लिए, यज्ञ के लिए और सब कामों के लिए, बस उसी दिन में आज आरंभ से उसका शुभ होता है, जरूर उसको सफलता उसमें। तीन ऐसे डेट हैं, अक्षय तीज, अक्षय तृतीया, विजयादशमी और बसंत पंचमी। ये तीन इंडिया में सेक्रेट डेट है। कोई भी दिन, इन तीनों दिन में कोई भी काम अपना शुभारंभ कर सकता है और उसका अच्छा फल होता है। रामचंद्र जी ने रावण पर विजय की क्या तात्पर्य है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। रावण बहुत विद्वान आदमी था, बहुत बड़ा भारी विद्वान, वेदों का आचार्य था, शंकर जी का उपासक था, उसके 10 शीर थे, कोई मारने से कटता नहीं था, जब काट दिया फिर नया शीर निकल आया, ऐसा बलवान था। जैसा रूप चाहे तैसा धर लेता था, कभी सन्यासी का रूप धारण कर लिया, अलक्ष्य में ऐसे ही उड़ सकता था, सारी सिद्धियां उसको प्राप्त थी और जो कुछ चाहता वही कर लेता। केवल भगवत भक्ति नहीं थी, शंकर भक्ति थी और दूसरी दुर्गा इत्यादि का उपासक था। विशेष करके उसका एक विचार ये था, भगवान शून्य है, निर्विशेष शून्य है, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। शक्ति तो हम लोगों में अभी भोग करने के लिए, भगवान शून्य है। इसलिए वो बौद्धों का एक आचार्य माना जाता था उस समय। इसलिए तो दुश्मन, ये विष्णु नहीं है, इसको मार गिराएंगे, क्योंकि उसका तो रूप है नहीं, वो तो जीरो है, ये अपने को झूठ क्यों कर रहा है। विष्णु राम उसको क्यों अपने को विष्णु कहता है, यदि कोई शक्ति है तो हम ले आएंगे, हम उसका उपभोग करेंगे, वो तो जीरो है, शून्य है, साइफर है। ये जगत शून्य से आया है, अभी भी शून्य है और शून्य में मिल जाएगा। जगत शून्य है, ये जीव भी शून्य है, ब्रह्म भी शून्य है। केवल इसी को कहते हैं बौद्ध फिलॉसफी। शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मवाद के बल पर इसका खंडन किया, किंतु इन्होंने दूसरे रूप में उसी बौद्धवाद को ग्रहण किया। तो रावण इसका त्रेता युग का आचार्य था, शून्यवाद का। बीच में व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने, नारद जी ने उसको समाप्त कर दिया था। इसके बाद में फिर अब कली काल में जब वो बढ़ा तो शंकराचार्य जी ने उसको यहां से भगाया, किंतु दूसरे रूप में उन्होंने उस बौद्धवाद को, शून्यवाद को ग्रहण कर लिया। और इसके बाद में कुमारिल भट्ट इत्यादि ने इस मत को यहां से खंडन करके भगाया। और इसके बाद में हमारे वैष्णव लोग रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बादित, इन लोगों ने भारतवर्ष में सर्वत्र प्रचार करके इस बौद्धवाद को सदा के लिए दूर कर दिया। किंतु आजकल फिर से बौद्ध अपना सिर उठाने लग गया है और ऐसा समय आएगा कि इसमें तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो कल्कि अवतार नहीं है, किंतु और सब में कल्कि अवतरित होकर के इनको जगत से ध्वंस करते हैं, इस बौद्धवाद को। रावण अपने 10 मुखों से शून्यवाद की प्रचार किया करता था। रामचंद्र जी ने उसे मार करके अपनी शक्ति को लौटा करके दिखलाया कि नहीं, मैं शक्तिमान हूं, रूपवान हूं, हमारे अंदर में समस्त प्रकार के गुण हैं, इसकी स्थापना की। चलिए बोलिए, ऑल एजेस, समस्त युगों में असुर लोग ही मायावादी और बौद्धवादी होते हैं समस्त युगों में। इसलिए जितने बड़े बड़े असुर हैं वो अद्वैत, केवल अद्वैतवादी, मायावादी या बौद्धवादी हैं। प्रारंभ से हमारे गुरुजी ने उस पुस्तक में महाभारत की जीवनी में इसको प्रूफ किया है कि जितने भी शून्यवादी हैं या केवल अद्वैतवादी हैं, मायावादी हैं, मोक्ष को मानने वाले हैं, ये सब बड़े भारी असुर हैं। और भगवान ने इन असुरों का विध्वंस किया। इसलिए इस जगत में जितने बड़े बड़े पंडित हैं जो अद्वैतवाद को या बौद्धवाद को ग्रहण करते हैं वो सब असुर हैं। उनको तनिक भी बुद्धि नहीं है, नहीं तो भक्ति वो जरूर ग्रहण करते। इसलिए रामचंद्र जी ने रावण अर्थात बौद्धवादी या मायावादी को मारा। 10 उसके शीर माने क्या, दशानन काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य और जितने प्रकार के दुर्गुण है उनका वो रूप है। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कामी, धूर्त, छली, जितने जगत के हैं वो सब उनमें पड़े भरे पड़े हैं। भगवान राम ने उसको ध्वंस किया। वही फिर द्वापर युग में शिशुपाल और दंत बक्कर होकर के आए, वो ठीक वैसे ही, और कृष्ण ने उनको संहार किया। इस तरह से जय विजय अपना यह पार्ट रोल कर रहे थे, ये शून्यवाद और केवल द्वैतवाद, मायावाद को दिखलाने के लिए, और कैसा उसका ध्वंस हुआ। इसलिए सब युगों में ऐसा हम देखते हैं कि भगवान या भगवान के अवतारों ने या भगवत भक्तों ने मायावाद का ध्वंस करके भक्तिवाद की प्रतिष्ठा की है। रामचंद्र जी का विजय इसी का द्योतक है। चलिए, इन दिनों में नवदुर्गा का पूजन होता है इंडिया में, किंतु ये अत्यंत अर्वाचीन और आधुनिक चीज है। आज से 250 वर्ष पहले कहीं भी दुर्गा जी की पूजा आजकल नहीं होती थी। बंगाल में एक वैसे ही डेमन का जन्म हुआ, उनका नाम था कृतिवास, डोंट टेल, ही वाज भक्त, कृतिवास ओझा, ही वाज द बिगेस्ट डेमन एट दैट टाइम। और वो तांत्रिक था, दुर्गा जी की उपासना करता था। उसने देखा जे मायावाद और अद्वैतवाद प्रचार करने का तो बहुत सहज तरीका है। वो क्या है तरीका, यदि हम किसी जगह लिख दें कोई पुस्तक राम की और राम के द्वारा उनकी दुर्गा जी की पूजा करा दें तो सब लोग भारतवासी हिंदू लोग इतने हैं ऐसे भाव मान लेंगे। बहुत से तो बेवकूफ हैं, कुछ वो शास्त्र जानते नहीं, इसलिए वो लोग हमारी बात को राम के नाम पर सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए उसने एक ग्रंथ लिखा रामायण और उसका नाम रखा कृतिवासी रामायण, जैसे वाल्मीकि रामायण कृतिवासी बंगला पद्य में। और उसमें राम के द्वारा रावण को वध करने के लिए दुर्गा की पूजा कराई। कैसे पूजा कराई उसमें कहानी लिखा। रामचंद्र जी उनको मारना चाहते थे किंतु मार नहीं सके, तो उन्होंने दुर्गा जी की पूजा की। 100 कमल उन्होंने मंगाया, 108 और कमल लेकर के और एक एक मंत्र से दुर्गा जी की पूजा करने लगे। जब 107 कमल हो चुका तो आठवां कमल छिपा दिया दुर्गा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए। जब छिपा दिया तो देखा जी 107 ही है, 108 तो हुआ नहीं, 108 करना चाहिए, शुभ संख्या है, क्योंकि 108 जो है सबसे बड़ी संख्या है। कैसे? 9 8 और 1 9, 9 के बाद में फिर 1 आ जाता है, 80 के बाद में फिर और ले जालो 90 हुआ फिर 1 आ जाएगा। जहां भी लाख तक गिनती करो 9 के बाद ही 1 आ जाएगा 1। इसलिए 8 1 9 ये सबसे बड़ी संख्या है, मैं इस बड़ी से बड़ी संख्या में उनकी उपासना करूंगा। इसलिए 108 से पूजा करने लगे, किंतु एक चोरी चली गई, दुर्गा जी ने चोरी कर लिया उनकी परीक्षा करने के लिए। राम जी ने देखा जी अब कमल तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, देखा जी हमको तो सभी लोग कमल नयन कहते हैं, हमारे नेत्र कमल के समान है, बस अपने तीर धनुष से उन्हें अपनी आंख निकाल ली और
आंख निकालने गए तो देवी को कर दिया।
ठीक, आंख निकालने के लिए गई, लगा दिया और रक्त जब गिरने लग गया तो कहा पुत्र पुत्र मत करो ऐसा, मैं संतुष्ट हो गई। और उन्होंने वरदान दिया अब तुम रावण को मार सकते हो। सब हिंदू लोग उसको पढ़ने लगे और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा जी तो राम की तो मैया और उपास्या देवी तो दुर्गा जी हैं। और तब से 250 वर्षों के बाद से बंगाल में ये आरंभ हुआ और बंगाल से सारे भारतवर्ष में और जहां जहां बंगाली हैं वहां पर आरंभ कर दिया। नौ नौ दुर्गा का पूजा उन्होंने कर दिया। कहां रामचंद्र जी का इस समय, और जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस समय भी नवरात्रि होती है, उसमें भी ऐसे ही कर दिया, दुर्गा जी का पूजा चला दिया, उसके लिए भी लिखा। इसलिए भोले भाली बंगाली लोग पहले और इसके बाद में भोले भाले भारतवासी सभी लोग, आज विश्व में जहां जहां बंगाली हैं, वृंदावन में भी माने जहां बंगाली होंगे वो जरूर उसके नारे उराव 9 दिन करे, किंतु बंगाली रह करे, हिंदू रह करे ना,
बंगाली लोग 4 दिन करते हैं।
सुनो बात तो ठीक है, किंतु आरंभ तो बंगाली लोग करते हैं ना, दूसरा कोई नहीं। तुम बंगाली से भड़कता क्यों है? तुम बंगाली थोड़े, तुम तो वैष्णव। तो वो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। अब उनकी देखा देखी भारतवर्ष में चारों तरफ में वो लोग सब करने लग गए।
9 दिन भी वही उन्होंने शुरू किया था।
तो 4 दिन इसके बाद धीरे 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 ये बढ़ता गया। पहले ये 9 दिन की पूजा राम की होती थी, सीता जी की, राम जी की। अब उन्होंने धीरे धीरे, जैसे मथुरा में पहले यहाँ पर कृष्ण नाम का हरि कीर्तन होता था और रात में जागरण होता था एकादशी के दिन, आजकल देवी का जागरण होने लगा। ये जहां से पंजाबी लोग आए, जहां जहां गए पंजाबी लोग, उन लोगों ने किया पंजाबी। और ये देवी जी की पूजा उन्होंने बंगाली, और इधर में पंजाबी लोग ये दुर्गा के पूजा के दिन रात्रि जागरण और दुर्गा का कीर्तन उन्होंने आरंभ। दोनों ये आसुरिक विचार हैं। इसलिए आज के दिन राम जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे, कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, ऐसे लोगों को सुबुद्धि दे करके भगवान की पूजा में उनके चित्त को लगाएं। चलिए बोल दीजिए। नहीं, दुर्गा पूजा साधारण रूप में दुर्गा पूजा भारतवासी लोग करते हैं, ये तो कृष्ण ने उनको वर दिया था जोग माया को, ये दुर्गा विजया कप्तानी इत्यादि में पूजा होगी। किंतु आज के दिन में और रामचंद्र जी के जन्म के समय में ये जो नई जो प्रथा चली दुर्गा पूजा की, ये उन्होंने चलाई
और दुर्गा जी को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने राम से उनकी
पूजा कराई। हाँ, ये बात। दुर्गा जी शंकर की पत्नी हैं, शक्ति हैं। शंकर और दुर्गा, शंकर और उमा जी ये परम भगवत भक्त हैं। राधा जी की छाया शक्ति का नाम दुर्गा है। ये जो जगत के जो लोग विमुख हो जाते हैं उनको दंड दे करके भगवान की सेवा में लगाती हैं, और भगवान के सप्त संकल्प से पैदा हुए इस जगत रूपी दुर्ग की सब समय रक्षायत्री होने से उनका नाम दुर्गा है। इस चीज को समझना चाहिए। दुर्गा जी का कार्य है असुरों का विनाश। एक समय में महिषासुर नाम का एक बड़ा भारी दैत्य दानव था। शरीर तो मनुष्य के समान, किंतु अपनी जोग माया से आसामी भैंसे के समान अपना रूप बनाता था। बड़ा बिगड़ैल आसामी, बहुत सिंह उसकी बड़ी मोटी और ऐसे घूमी हुई, और ऐसे और चलता था तो ऐसे चलता था। बड़े डेंजरस होते हैं आसामी भैंस, और जितने भक्त होते थे उनको डराता था, धमकाता था, और भक्ति का विरोधी था। इसलिए शंकर जी ने उनसे कहा कि हमसे भी नहीं मरेगा, ऐसा बर मांगा है, हम ही से बर मांगा, जे आप हमको नहीं मार सकते हैं, कोई भी पुरुष के हाथ से मैं नहीं मरूं, और ब्रह्मा इत्यादि के सृष्टि में बनाए हुए किसी से नहीं मरूं। तो पुरुष तो आ गया भगवान का अवतार या भगवान के भक्त यार, ये सब इनके हाथों से नहीं। इसलिए उन्होंने कहा दुर्गा जी से आप इसका ध्वंस कीजिए। बड़ा भारी अत्याचारी था, भक्ति का विरोधी था, भगवान का रूप नहीं मानता, और वो भी इसी तरह से मायावादी अद्वैतवादी था। उसको दुर्गा जी ने उसका आज के दिन नहीं कभी संहार किया था। इसलिए महिषासुर मर्दिनी उनका नाम है। पुराण में कहीं कहीं पर, मार्कंडेय पुराण के इत्यादि में कहीं कहीं पर यह ऐसा देखा जाता है, किंतु आज के दिन में उनकी ऐसी पूजा होती है और कमल के फूल से रामचंद्र जी ने उनकी आराधना की, किसी भी शास्त्र में, रामायण में या पुराण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए हम महिषासुर मर्दिनी दुर्गा जी को हम प्रणाम करते हैं, उनसे भक्ति की वरदान मांगते हैं, जो हमारे माया को हटा करके कृष्ण के चरणों में भक्ति दे। यहां तक तो ठीक है, किंतु दुर्गा ही इष्ट देवी हैं ऐसा नहीं। इष्ट देवी हमारी राधिका जी हैं, जिनकी ये छाया है। इसलिए राधिका जी के पूजा करने से दुर्गा जी की पूजा अपने आप हो जाती है। पृथक रूप में उनकी उपासना करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तब हाँ, जना यदि उनका विग्रह है तो जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में गए, कन्याकुमारी में, मीनाक्षी देवी में उनको प्रणाम किया और हरे कृष्ण उनको सुनाया, ऐसे ही हम लोग उनकी पूजा करेंगे इसी रीति के साथ में। दूसरी बात, आज मध्वाचार्य जी का जन्मदिन है। मध्वाचार्य हनुमान के और फिर भीम जी के अवतार हैं। हनुमान जी कौन है? शंकर जी साक्षात हैं। इसलिए शंकर रूप में भगवान की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का रूप और कृष्ण के लीला में भीम का रूप धारण करके भगवान राम और कृष्ण की सेवा की थी। आज उनका जन्म दिवस है। कैसे सेवा की? कौन सी सबसे बड़ी सेवा है? उनका पैर दबाना या और कोई काम? ये तो है, किंतु उनके अभ्यंतर की जो सेवा है, मनोभीष्ट सेवा है, वो बहुत बड़ी सेवा है। उन्होंने क्या किया मध्वाचार्य जी ने? उन्होंने भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा की और उसका प्रचार किया। जीव और ब्रह्म एक नहीं है, कभी एक में नहीं मिल सकते। जगत झूठा नहीं है, परम सत्य है। जिस जगत में, जगत को भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति से प्रकट किया है, वो झूठा कैसा हो सकता है? और जहां पर वेदों में ये लिखा सर्वम कलेदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो ये जगत इदम ब्रह्म हुआ, तो ये झूठा कैसा हो सकता है? ये झूठ नहीं होगा, सत्य होगा। इसलिए मायावाद का इतना खंडन किया है, जयरामानुजाचार्य भी उतना नहीं खंडन कर सके। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने या चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्व संप्रदाय के इन विचारधाराओं को लेकर के उसका खंडन किया। हम ऐसा तो नहीं कर सकते जब महाप्रभु जी ने उनका विचार लिया, ये बात तो ठीक नहीं है। तो भी महाप्रभु जी ने जिन युक्तियों को और ये सब लिया, ये मध्व संप्रदाय के अंदर में कुछ कुछ उसमें है। इसलिए मध्वाचार्य ने मायावाद का खंडन करके शंकराचार्य के केवल अद्वैत और मुक्ति को खंडन विखंडन करके छोड़ दिया और आश्रयिक मत का खंडन किया और भक्तिवाद की प्रतिष्ठा की। कुछ लोग कहते हैं जो गौड़ीय वैष्णव लोग मध्व संप्रदाय के अंतर्भुक्त नहीं है, यह कहना संपूर्ण रूप से गलत है। हमारे जीव गोस्वामी से लेकर के श्री भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद और हमारे गुरु जी सब लोगों ने गौड़ीय वैष्णव को मध्व संप्रदाय के अंतर्गत अंतर्भुक्त माना है। हमारे आचार्यों के वचन इसके लिए प्रमाण है। हम गुरु जी का यह जीवन चरित्र लिख रहे हैं, उनमें ये सारी युक्तियों को हम संक्षेप में वर्णन करके देंगे। वो भी एक अद्भुत ग्रंथ होगा जो हम लिख रहे हैं। उसको संक्षेप में यद्यपि लिख रहे हैं किंतु सारी विचारधाराएं आएंगे। गुरु महाराज जी ने कौन कौन विचारों को कैसे कैसे खंडन किया, सारी युक्तियों को, और भक्ति की कैसे प्रतिष्ठा की है। तो शंकराचार्य उनमें साध और साधन का कोई भी अंतर नहीं। उन्होंने भक्ति को साधन माना है, हम लोगों ने भी भक्ति को लिया है। माया के द्वारा किए हुए इस विरूप को छोड़ करके स्थूल और लिंग शरीर से शुद्ध होकर के अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के भगवान की ब्रजरसमयी जो भक्ति है उसमें प्रतिष्ठित होने का नाम है। विशेष करके वहां के उडुपी के मठ में आठ मठ हैं, आठों मठ के जो सन्यासी अधिकारी होते हैं दो दो, वो गोपी भाव से कृष्ण का भजन करते हैं। विशेष करके नर्तक गोपाल, ये कौन है, दधी मंथन हाथ में लिए, ये नंद नंदन नंद कुमार जशोदा नंदन, ये कृष्ण है, उनकी वहां पर उपासना होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय को ग्रहण किया और उनके सारे अनुवायी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, मध्व संप्रदाय के अंतर्भुक्त मानते हैं। दूसरी बात, भगवान कोई संप्रदाय नहीं चलाते। भगवान के अवतार, भगवान के जो भक्तल होते हैं उनके शक्ति चलाती है। जैसे ब्रह्मा, ब्रह्म संप्रदाय, श्री लक्ष्मी जी श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ये सब उनकी शक्ति हैं, ये चलाते हैं, भगवान नहीं चलाते। ये समस्त संप्रदायों के आराध्य देव हैं। ये काम जो काम उनका है, भगवान का काम है प्रेम का प्रचार करना, उसकी प्रतिष्ठा करना, और शक्ति का कार्य है संप्रदाय इत्यादि उपासना की प्रणाली चलाना। इसलिए इन लोगों ने संप्रदाय की प्रणाली चलाई। चैतन्य महाप्रभु को संप्रदाय का प्रवर्तक करना कहना ये उनका अपमान करना है, इसलिए ऐसी बात नहीं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव मध्व संप्रदाय के अंतर्गत है। मध्व संप्रदाय, मध्वा जी और उनके संप्रदाय के लोग शुद्ध भक्ति के प्रचार, कोई भी विषय किसी भी विचार में ऐसा नहीं देखते कि जीव और ब्रह्म में निश्चित भेद है, ये नहीं कहते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने नर्तक गोपाल का रूप देखा, भगवान का सत्य विग्रह देखा और भक्ति का विचार देखा और जीव और ब्रह्म में भेद देखा। इसलिए महाप्रभु शुद्ध केवल नहीं, अद्वैत आचार्य पुंडरीक विद्यानिधि, नहीं तो इनके बाद में अद्वैत नित्यानंद प्रभु इत्यादि जितने हमारे संप्रदाय के बड़े बड़े ये लोग हैं, सब मध्व संप्रदाय के अंतर माधवेन्द्रपुरी के अनुगत होकर के उन्होंने भजन किया है। तो आज मध्वाचार्य का भी जन्म दिवस आज के दिन है। आज हम उनको प्रणाम करते हैं, महिष मर्दिनी श्रीमती दुर्गा जी जिनका मूल है राधिका जी, उस राधिका जी को प्रणाम करते हैं, और रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं जो रावण का ध्वंस किया, उसके 10 सिरों को उड़ा करके, और सीता जी को की प्रतिष्ठा की, भक्ति की प्रतिष्ठा की। आज उस रामचंद्र जी को भी हम प्रणाम करके उनके चरण में पुष्पांजलि ग्रहण करते हैं। बस समाप्त कीजिए। वैष्णव संप्रदाय तीज थे,
वही मैं कह रहा हूँ, आपने ये भी कहा था भगवान संप्रदाय।
डे आई वॉन्ट टू वी हैव पब्लिश्ड भागवतीय वेणु गीत इन हिंदी. फर्स्ट इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश ट्रांसलेटेड बाई प्रेम. बट देर वेर सो मेनी मिस्टेक्स सो अगेन आई रोट दिस वेणु गीत इन हिंदी. टूडे द फर्स्ट कॉपी आई एम हैंडिंग ओवर टू माई गुरुदेव. ही विल टेक इट एंड सी एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड ही विल गिव अस बेनिडिक्शंस एंड हिज मर्सी. आई थिंक दैट दिस बुक शुड बी वेरी क्विकली इट शुड बी ट्रांसलेटेड इन वेरी बोनाफाइड एंड वेरी स्वीट लैंग्वेज इन इंग्लिश एंड अदर also in French and Spanish language also. It is so good. And so I think that there are so many qualified persons, devotees, and they can translate it easily in English. We think that very soon we will have first part of Gita, Srimad Bhagavad Gita, which I have done in Hindi. And also Jaivadharma, first part of Jaivadharma. Very quickly. I am trying that it should come before my going to eastern countries. And also I want to publish Gita in English. And some qualified person are doing this. I think that it may also come very soon. I want that with a very great enthusiasm and courage and utsah.
Enthusiasm.
All bona fide, qualified persons should engage themselves in translating and preaching these books, like Swamiji has done in his time. So I request you all to help me and to do all these things and to publish these books. And you can very easily you can preach over whole world and distribute these books in whole world. Gaur Pramana. Is anything he will tell? And